दामन समंदर का साहिल मेरी आह दिल के यही है मनाजिल मेरी आह दिल के यही है मनाजिल। हमारे वाले रमतलाल फरमाते थे कभी कभार कभी कभार पहाड़ों के दामन में और समंदर के साहिल भी जाओ जहाँ लेकिन बेपर्दगी ना हो वहाँ वहाँ जाओ फरमाते थे। और देखो कभी कभार ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, सब इश्क तेज हो जाता है आशिकों का। हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह को समंदर का साहिल, पहाड़ों का दामन, दरिया का किनारा और जंगल का सन्नाटा, फरमाया ये चार चीजें मुझको महबूब हैं, इसमें इश्क तेज हो जाता है। पहाड़ों का दामन समंदर का साहिल, इसको कहो बैठ जाओ ए मियां। पहाड़ों का दामन समंदर का साहिल मेरी आह दिल के यही है मनाजिल। जनाजा हुआ कब्र में आज दाखिल, हुई खाक तन नाज मिट्टी में शामिल, हुई खाक तन नाज मिट्टी में शामिल। जनाजा हुआ कब्र में आज दाखिल, हुई खाक तन नाज मिट्टी में शामिल, हुई खाक तन नाज मिट्टी में शामिल। तेरा फैज है सोहबत शेख कामिल, तेरा फैज है सोहबत शेख कामिल, हुआ सबका दिल दर्द निस्बत का हामिल, हुआ सबका दिल दर्द निस्बत का हामिल। तेरा फैज है सोहबत शेख कामिल, हुआ सब का दिल दर्द निस्बत का हामिल। नहीं कोई रहबर है राहे जुनून का, यानी अल्लाह ताला के रास्ते का, राहे जुनून यानी अल्लाह ताला का रास्ता, दीवानगी का रास्ता। नहीं कोई रहे बर है राहे जुनून का, यानी दीवानगी का माना लौट आए जितने फरजाने गए, तब मंजिल सिर्फ दीवाने गए, यानी मंजिल पर सिर्फ दीवाने पहुंचे, लौ आशिक पहुंचे। इश्क जिसका इमाम होता है उसका ऊंचा मकाम होता है। हज़रत वाला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शैतान आलिम भी था, आबिद भी था, आरिफ भी था, लेकिन फिर भी महरूम और मर्दूद हो गया क्योंकि आशिक नहीं था। एक इश्क का, तीन आइन थे उसके पास, लेकिन एक आइन इश्क का आइन नहीं था। आबिद भी था, आलिम भी था, आरिफ भी था, आशिक नहीं था, तो मर्दूद और महरूम हो गया। तो इसीलिए ये इश्क की जरूरत है अल्लाह के रास्ते को तय करने के लिए, लेकिन हुदूद शरीयत में हो वो इश्क। अगर हुदूद शरीयत से इश्क भी जो तजावुज करेगा वो भी बातिल है, वो भी बातिल, वो भी गुमराह कर देगा। जब ये हमारे तआला फरमाते थे, आजमत मोहब्बत पर गालिब रहे, आजमत मोहब्बत पर गालिब रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर आजमत गालिब रहे। मोहब्बत अगर आजमत पर गालिब आएगी तो फिर बिदात की तरफ ले जाती है, मोहब्बत अगर आजमत की तरफ पर गालिब आ जाती है तो फिर बिदात की तरफ ले जाती है। तो मुस्तनद रस्ते वही माने गए, जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए। अकल परस्त यानी अकल को लड़ाने वाले, अहकाम शरीयत में अकल को दखील बनाने वाले, ये हैं फरजाने। अकल को दखल देने वाले अहकाम शरीयत में, इसको कहते हैं फरजानगी। लौट आए जितने फरजाने गए, वरना तो अकल बहुत मुबारक है, लेकिन जो दखील हो या दखल दे यानी अहकाम शरीयत में, तो वो फिर मुखिल है इस रास्ते में, उस वो फिर रुकावट है, माने हैं, वो अल्लाह तक पहुंचने नहीं देते। मुस्तनद रस्ते वही माने गए, जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। आह को निस्बत है कुछ अशाक से, आह निकली और पहचाने गए। की चांदनी सोहबतों का दिया, असर भाई हमारे तआला के खलीफा हैं, फरमाते हैं हजरत वाला की मजलिस जो होती थी, फरमाते हैं उसके और हजरत की जो सोहबत थी, फरमाते हैं फहम की चांदनी सोहबतों का दिया, इल्म की रोशनी इश्क का रास्ता, इत्तबाए शरीयत में दीवानापन, ये दीवानगी, इत्तबाए शरीयत में दीवानापन है। कराची में भी एक थाना भवन, तो फरमाएं कि फहम की रोशनी सोहबतों का दिया, इल्म फहम की चांदनी सोहबतों का दिया, इल्म की रोशनी इश्क का रास्ता, फहम की चांदनी सोहबतों का दिया, इल्म की रोशनी इश्क का रास्ता, इत्तबाए शरीयत में दीवानापन है कराची में भी एक थाना भवन। ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तरीका था कि मकसूद सिर्फ अल्लाह की रजा हो, और मकसूद हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रजा हो। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी जमाने में, कि हजरत ये जो अहले देवबंद हैं उनमें से भी कुछ मजलिस शूरा के मेंबर का इंतखाब एक दो अगर अहले देवबंद में से हो जाए तो कितना ना हो, फसाद खत्म हो जाए, इतने से बचने के लिए अक्सरियत तो अपने ही लोगों की। तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं, ना अहल को मेंबर बनाना मासियत गुनाह है, तो ना अहल को मेंबर बनाना गुनाह है, तो गुनाह करके जो मदरसा बाकी रखा जाए उससे मकसूद क्या होगा? मकसूद तो अल्लाह की रजा होना चाहिए। अगर हमने मिंबर ना अहल को नहीं बनाया, अल्लाह राजी हो गया और मदरसा चाहे बंद हो गया, तो नुकसान क्या है? यही हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तरीक था फिर, कि अल्लाह की रजा को मकसूद बनाए, चाहे अल्लाह की रजा को छोड़कर कितना ही नफा मालूम हो। हकीम उल उम्मत फरमाते थे कि ये जो मसाले हैं, मसाले इसी को आजकल कहते हैं मसलहत परस्ती, तो मसालों को फरमाया जितना पीसो उतना जायका आता है, उतना जायका आता है, मसालों को जितना पीसो और तकाजों को जितना पीसो उतना रंग आता है। हम मेहंदी हम गए सफर पे तो देखा मेहंदी के वो पौधे लगे, तो भरत वाला रमता फरमाते थे जितना पीसो उतना रंग आता है। तो तकाजों को जितना आदमी पीसता है उतना अल्लाह का रंग चढ़ता है, अल्लाह की मोहब्बत का और ताल्लुक का बंदे पर रंग चढ़ता है, उतनी दीन में ईमान में पुख्तगी आती। जितना तकाजों को जो पीसेगा उतना ही उसमें पुख्तगी, उतना रंग चढ़ेगा, अल्लाह की मोहब्बत का रंग चढ़ेगा उसके अंदर। तो फहम की चांदनी सोहबतों का दिया, इल्म की रोशनी इश्क का रास्ता, इत्तबाए शरीयत में दीवानापन है कराची में भी एक थाना भवन। हजरत मौलाना अबरार हक साहब रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ आए हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में, हजरत वाला हयात थे तो फरमाया उस वक्त आए, पहले इंतकाल हो गया था 2005-06 में, तो उस वक्त तशरीफ लाए तो फरमाया कि मुझे तो यहाँ थाना भवन का रंग नजर आ रहा है, थाना भवन का रंग नजर आ रहा है। तीसरी गद के मुस्तनद रस्ते वही माने गए, जिनसे होकर दिले तेरे दीवाने गए। ये अल्लाह की मोहब्बत और दीवानगी की जरूरत होती है अल्लाह के रास्ते को तय करने के लिए, इससे वसवसों की जड़ कट जाती है, वसवसों की जड़ कट जाती है। नहीं कोई रहबर है राहे जुनून का, मगर साया सोहबत शेख कामिल, मगर साया सोहबत शेख कामिल। मौलाना कासिम ननौती रहमतुल्लाह ने पूछा हजरत थानवी रहमतुल्लाह हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजी मक्की रहमतुल्लाह से कि हजरत ये नौकरी छोड़ दूं, पढ़ाते थे तो मैं पूछा कि नौकरी छोड़ दूं, फरमाया अभी तो आप पूछ ही रहे हैं, पूछना अलामत तरद्दुद है राह जुनू, मगर साजाए सोहबत शेख काम। कितने बड़े आलिम थे मौलाना कासिम ननौती रहमतुल्लाह, लेकिन फिर भी देखें हाजी इमदादुल्लाह महाजन मक्की रहमतुल्लाह क्या थे। हकीम उम्मत ने फरमाया हाजी साहब के जो उलूम थे उन उलूम के सामने उलमा के उलूम भी कुछ नहीं थे, फरमाया उन उलूम के सामने उलमा के उलूम भी कुछ नहीं थे, यानी हकीकी इल्म हक ताला ने अता फरमाया था। इल्म आबाशत के बुक शायद रहे राह, आबाशत के पेश आया शहे, इल्म वो है जो रास्ता दिखा दे और रास्ता वो है जो महबूब से मिला दे, अल्लाह से मिला दे, अल्लाह तक पहुंचा दे। तो कहा फरमाया कि मौलाना अभी तो आप पूछ ही रहे हैं और पूछना अलामत तरद्दुद है और तरद्दुद नक्स की अलामत है, और जब ये नक्स के होते हुए छोड़ना फरमाया कि मुझे तशवीश है, इसे तशवीश होगी और तशवीश मुखिल मकसूद है, यानी अल्लाह के रास्ते में फिर मुखिल हो जाएगी, रुकावट बन जाएगी, जो खास ताल्लुक अल्लाह का इसके होते हुए फिर नसीब नहीं होगा। और जब कुव्वत पैदा हो जाएगी तो फरमाया कि लोग तुम्हें जंजीरों में जकड़ेंगे और तुम तोड़ा के भागोगे, देखें तुम तोड़ा के भागोगे। एक शख्स हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजन मक्की रहमतुल्लाह से बैत था, हजरत हाफिज जामी सईद रहमतुल्लाह से बैत था और हाजी इमदादुल्लाह महाजन मक्की रहमतुल्लाह की मजलिस में बैठा हुआ था, तो उसके दिल में यही था कि भाई कौन इनमें बड़ा है, कौन जो है ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा अफजल है। हाजी इमदादुल्लाह महाजन मक्की हैं तो ये अफजलियत बाजे इसी उसमें रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो कहा कि कौन हाफिज जामिन शहीद ज्यादा कबीर नस्बत है, ज्यादा इंदल्ला मकबूल हैं, ऊंचे दर्जे पर है या जी हाजी इमदादुल्लाह महाजन वकील, तो हाजी इमदादुल्लाह महाजन वकील रहमतुल्लाह मजलिस में वास कहते कहते अचानक से फरमाया कि भाई बादल छोटा है या बड़ा, इसको सैराब करने के लिए दोनों काफी है। हाँ, बादल छोटा है या बड़ा ये ना देख, तुझको सैराब करने के लिए दोनों काफी है। तो इसलाह की जो का जो तालिब हो उसकी तो इसलाह हो जाती है, लेकिन जो इसी चक्कर में लगा रहता है कौन सा बादल छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा ज्यादा बरसने वाला है, तो इतना देख ले कि मुनासिबत देख ले मुनासिब। हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया नफे का मदार भी मुनासिबत पर है, कमालात पर नहीं। बहुत बड़ा मसला है, हल कर दिया। फरमाया कमालात पर नफे का मदार नहीं है, मुनासिबत पर है। इसीलिए फरमाया सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह से हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह सैयद अहमद शहीद से बैत हो गए, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के होते हुए। उसकी वजह यही थी कि सैयद अहमद शहीद से उनको मुनासिबत थी, इसीलिए नफे का मदार मुनासिबत पर है। दिल का मिलना, दिल के मिलने की है बात कुछ और ही, साथ रहते हैं गो एक मुद्दत से हम, हमारे तौला के शेर हैं। दिल के मिलने की है बात कुछ और ही, साथ रहते हैं गो एक मुद्दत से हम। और हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह मुजद्दिद थे। हकीम उल उम्मत मौलाना शबली साहब थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह मुजद्दिद थे। असफिया में भी फरमाया मुजद्दिदीन होते हैं, तसव्वुफ में जो गैर दीन की बातें दाखिल हो जाती हैं उनको निकाल देते हैं, और जो दीन की बात निकाल दी जाती है दीन से उसको दाखिल कर देते हैं, दीन और गैर दीन को अलग अलग कर देते हैं। तो फरमाया कि सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह भी मुजद्दिद थे, और मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह भी फरमाया ये भी मुजद्दिद थे। तो और फरमाया हाजी इमदादुल्लाह महाजन मक्की रहमतुल्लाह भी मुजद्दिद थे, तसव्वुफ के मुजद्दिद थे, और एक वक्त में एक मुजद्दिद भी होता है और दो भी और कई भी होते हैं, फरमाया कई भी होते हैं। तो फरमाया हाजी इमदादुल्लाह महाजन मक्की रहमतुल्लाह भी मुजद्दिद थे तसव्वुफ के। हजरत वाला रहमतुल्लाह के साथ भी अब मुजद्दिद ज़माना कहा जाता है, हजरत वाला रहमतुल्लाह ने भी जो माशाअल्लाह ये मुजद्दिद थे। नहीं कोई रहबर है राहे जुनून का, मगर साया ए सोहबत शेख़े कामिल, मगर साया ए सोहबत शेख़े कामिल। हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह से बैत थे मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई, हमारे फादर के जो शेख थे। और मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मौलाना अबरारुल हक साहब मुरीद के बारे में शेख कह रहे हैं, मौलाना अबरारुल हक साहब गौस हैं, मौलाना अबरारुल हक साहब गौस हैं, जो औलिया अल्लाह का सरदार होता है उसको गौस कहते हैं। हमारे शेख रहमतुल्लाह ने फरमाते थे गौस को अल्लाह ताला ऐसा अपना क़ुर्ब 24 घंटे में कुछ वक्त ऐसा अपना क़ुर्ब आता फरमाते हैं कि उस जमीन रुए जमीन पर इतना क़ुर्ब और किसी को नसीब नहीं होता, इतना क़ुर्ब रुए जमीन पर और किसी को नसीब नहीं होता, इतना हक ताला उसको अपना क़ुर्ब नसीब फरमाते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये मुझे तसल्ली इत्मीनान असफिया की बातों से हुआ। इत्मीनान जो बातिन में इत्मीनान एक होता है, इत्मीनान की कैफियत वो असफिया की, यानी वो बात तो है हाजी इमदादुल्लाह महाजन मक्की रहमतुल्लाह की बातों से, फरमाया असफिया की बातों से हुआ इत्मीनान, इत्मीनान नसीब हुआ, यकसुई नसीब हुई, इसे कहते हैं ना यकसुई नसीब हुई उनकी बातों से। हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजन वकील रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे मेरी बात नहीं इश्कालात मसनवी मौलाना रूम से हल होती है। हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी भी अजीब है, फरमाते थे ये शम्सुल औलिया है, औलिया अल्लाह के सरदार हैं, शम्सुल औलिया नहीं कोई रह बल है राहे जुनू का मगर साया सोहबत शेख कामिल। और हज़रत हाजी इमदादुल्लाह माजिद मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पहले तो मैं समझता था कि मेरे मुताल्लिकीन में मौलाना गंगोही और मौलाना कासिम ननौती सबसे ऊंचे गए, और अब मेरे विजदान में ये बात आ रही है, दिल में ये बात आ रही है, फरमाया कि मौलाना अशरफ अली इन दोनों से भी ऊंचे गए, मौलाना अशरफ अली इन दोनों से भी ऊंचे गए। सुभान मेरे दोस्त तो जिक्री की बरकतों से, मेरे दोस्त तो हैत वाले मतलब अपने अहबाब को दोस्तों फरमा लेते कि मेरा दोस्त है, यानी ये कभी कह दिया कभी कि भाई मेरा मुरीद है, आम तौर से नहीं कहते दोस्त है ये हमारा दोस्त है, इस तरीके से दोस्त फरमाते थे। तो और कोई कहता जब दुआ बयान में दुआ कराते बयान के बाद, वो कहते भाई मेरे दोस्तों ने जिन लोगों ने दुआ की फरमाइश की, ये नहीं कहते जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की, क्योंकि दरख्वास्त तो बड़े से की जाती है, तो अपने को बड़ा ना समझे कभी, बोल चाल में भी बड़ाई जाहिर ना हो। तो फरमाते कि भाई जिन लोगों ने दुआ की फरमाइश की है? फरमाते थे ये ना कहो जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की है, तो उनके लिए भी दुआ करते हैं, जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की नहीं, जिन लोगों ने दुआओं की फरमाइश की है। फरमाइश तो भाई ऐसी बात नहीं, फरमाइश कहने में तो इसको दोस्तों फरमाते थे। और फरमाए कि अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आवाज तेज कर दो। तो और एक दफा फरमाया कि भाई कोई ऐसा कुछ लिखवाना था, तो फरमाया कि इसमें लिख दो पीर लिख दो पीर लिखने में कोई मजाका नहीं, पीर तो बूढ़े को भी कहते हैं, फरमाया पीर तो बूढ़े को भी कहते हैं, शेख लिखने में तो जरा वो होता है, कहा भाई पीर है, इनका पीर हो, पीर लिखने में कोई पीर तो है वो है ना, असर भाई का शेर है, पीरी में मेरे पीर की आखिर कोई तो बात है, यूं ही फिदा असर ने कब अपना शबाब कर दिया पीरी में मेरे पीर की पीरी में मेरे पीर की आखिर कोई तो बात है, पीरी में मेरे पीर की आखिर कोई तो बात है, यूं ही फिदा असर ने कब अपना शबाब कर दिया। तो फरमाया पीर खुलकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को ज़ईफ पैदा किया गया, तो फरमाया हम तो ज़ईफ हैं, और एक दफा फरमाया कि हम तो ज़ुआफ़ा के अमीर हैं, ज़ुआफ़ा के अमीर अमीर ज़ुआफ़ा हैं। बाद वक़ालत वाले फरमाते थे कि भाई मुझे भी एक दफा फरमाया काफी अर्से तक, भाई 10 दफा किया करो जिक्र, बस 10 दफा जिक्र किया करो। और फरमाया कि मैं भी बाद औकात 10 दफा करता हूँ, कि दिमाग में जब ज़ौफ होता है, दिमाग में जब ज़ौफ होता है तो उस वक्त हो गई खुश, हमें तो ज़ौफ आता है इन लड़ाई झगड़े फसाद दंगा फसाद लड़ाई करके आ गए, ज़ौफ आ गया, दिमाग में जिक्र कम कर रहे हैं जनाब गाड़ी में लोच हो गई, कंडक्टर से फड्डा कर लिया, पेट्रोल पंप पे जना कहीं धरना दे के आ गए, कहीं जनाब कोई और हरकत, तो इससे ज़ौफ होता है, कहीं जनाब वो धूप में निकल गए, तो वो खाम खा बाजारों में है, तो इससे ज़ौफ। और अहलुल्लाह को ज़ौफ जो होता है वो भी याद हक में लगने से, जिक्र अस्कार कभी अश्क ज्यादा बह गए अल्लाह की याद है, आंसू ज्यादा बह गए, ہو گئی خشک چشم تر، بہ گیا ہو کہ خون جگر، رونے سے دل میرا مگر ہائے ابھی بھرا نہیں. تو دونوں کا سبب الگ الگ ہے. ہم لوگوں کا سبب الگ ہے، ضعف دماغ کا، ضعف قلب کا. اہل اللہ کا سبب ضعف دماغ، ضعف قلب کا اور ہوتا ہے. اسی لیے اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے اہل اللہ کو. کار پاکان را قیاسس خود مگیر. رضی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پاک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو. گھر سے مانت در نوشتن شعر و شیر، کہ شعر اور شیر دونوں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں لیکن فرق بہت ہے. شیر مان دودھ اور شیر مانا شیر، تو کتنا فرق ہے. تو کار پاکان را قیاسس خود مگیر. محروم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پاک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو. انہوں نے مجاہدات کیے، وہ دریا خون سے عبور کیا ہے، مجاہدات کے سمندر سے، پورے غم کے سمندر سے گزرے ہیں. ایسے اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوتا تو پورے غم کے سمندر کو عبور کرتا ہے اللہ کے راستے، کہ پھر اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے. اللہ ایسے نہیں ملتا. ان حسینوں سے دل بچانے میں، ہمارے قولہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں. ان حسینوں سے نظر بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں. اور منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں. زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. تو زخم حسرت کھانا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ملتا ہے. تو ہر غم بھی مطلوب نہیں ہے، جو گناہ سے بچنے کا غم ہے وہ اٹھانا مطلوب ہے، وہی محبوب ہے، وہی مقبول ہے. مقبول غم ہے، وہ غم مقبول ہے. ورنہ جو اللہ کے جو تقوی کا غم نہیں، ایسی گناہ کرنے کا غم ہے، وہ مردود ہے اور لعنتی غم ہے. اس سے اللہ سے قرب نہیں، دوری بھی ہوتی ہے. دنیا بھی برباد ہوگی، دنیا میں بھی غم ہوگا اور ہوگا، اللہ سے بھی دوری ہوگی، اللہ سے بھی دوری ہوگی. تو خیر باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں. میرے دوست تو ذکر کی برکتوں سے، تھوڑی سی آواز کھول. میرے دوست تو ذکر کی برکتوں سے سکینہ ہوا دل پہ ہم سب کے نازل. سکینہ نازل ہوتا ہے جب آدمی ذکر کرنے بیٹھتا ہے اور ذکر کر کے اٹھتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، دیکھو ایک کیف ہوگا دل میں، ذکر سے پہلے نہیں، ذکر کے بعد ایک کیف دل میں محسوس ہوگا، وہ سکینہ کا اثر ہے، نور سکینہ کا اثر. نیک صحبت میں گیا، صحیح جگہ تعلق ہوا، وہاں نیک صحبت میں گیا، جب گیا تو ایسی مردہ دل لے کے بیٹھا، اس کے بعد جب اٹھا تو دل میں ایک خوشی ہے، ایک کیف ہے، نور سکینہ کا اثر ہوتا ہے. عفت ہم الملائکہ وغشیت ہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ. تو جو اللہ کو بیٹھ کر یاد کرتے ہیں، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. حدیث شریف میں وغشیت ہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. نزلت علیہم السکینہ، اور سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے، نور نازل ہوتا ہے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں. اس سے بہتر مجلس میں اللہ تعالیٰ اس کو یاد فرماتے ہیں. اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، حدیث شریف میں دعا سکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اے اللہ تعالیٰ میرے دل کے تالوں کو اپنے ذکر سے کھول دے. یہ ذکر کنجی ہے، اسے دل کے تالے کھل جاتے ہیں. یاد رکھیں، خس و خاشاک جلتے جا رہے ہیں، نکلتا آ رہا ہے رنگ گلشن. اسی لیے ذکر جو بتایا جائے اس کی پابندی کرنی چاہیے، اس میں ناغہ نہ کرے. اور ایک تو ذکر کی صورت ہے وہ بھی ہو، اور ایک حقیقت اور روح ہے وہ بھی ہو. کیونکہ روح کا ہوتا ہے تب بھی روح کا فاقہ ہے، یعنی جو یعنی توجہ نہیں، بے توجہ ہی کے ساتھ ذکر کر لیے، ادھر ادھر توجہ بھٹک رہی ہے تو، اور ذکر پورا ہو گیا، تسبیح پوری ہو گئی، یہ بھی ایک قسم کا ناغہ ہے. اس سے روح فاقے سے رہے گی، سیری نہیں ہوگی قلب میں، سیری نہیں ہوگی، وہ خاص نفع نصیب نہیں ہوگا، خاص نفع نصیب نہیں ہوگا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلوت کا ذکر چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ضعیف ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ مجمع ہی میں ذکر نہ کرتا رہے، وہ ذرا سا خلوت میں ذکر کرے. ہر آدمی کے ایک گھر ہے، اس میں ایک ہی کمرہ ہے، تو ایک کونے میں بیٹھ کے کر لے ذکر، یہ بھی خلوت ہے. یعنی سب میں ہی بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا ذکر بھی کر رہا ہے، تھوڑی سی بات چیت بھی کر لی، تو وہ اس طرح خلوت نہیں ہوئی. صحیح سے خلوت ہو، تھوڑی دیر خواہ ہو، اس سے پھر تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی جاتی ہے، ورنہ آہستہ آہستہ تعلق مع اللہ میں ضعف آ جاتا ہے، ضعف آ جاتا ہے. اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، یہ اللہ میرے دل کے تالوں کو کھول دے ذکر سے، اپنے ذکر سے، اپنے ذکر سے میرے دل کے تالوں کو کھول دے. اس سے پتہ لگا کہ دل کے جو تالے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے کھل جاتے ہیں. دل پہ تالے پڑے ہوئے ہمارے، غفلتوں کے تالے پڑے ہوئے، وہ غفلتوں کے تالے کھل جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے. اچانک ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب کوئی صاحب نسبت ہوتا ہے اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ میرا دل کا دروازہ کھل گیا اور دل میں کوئی آ گیا. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، ایک بجلی سے پہلے کون دی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے. آیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بجلی سے پہلے کون دی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. تو فرمایا جب انسان مستقل کسی دروازے کو دستک دیتا ہے تو پھر وہ دروازہ کھل جاتا ہے. یعنی اللہ کے دروازے کو دستک دینا ہے، ذکر کرتے رہنا، دل کا دروازہ کھل جائے گا، اچانک اللہ کی کے خاص تعلق کا انکشاف ہو جائے گا پھر قلب میں.
میرے دوست تو ذکر کی برکتوں سے سکینہ ہوا دل پہ ہم سب کے نازل، سکینہ ہوا دل پہ ہم سب کے نازل، عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے، عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے کہ قرآن ہوا آج جیسے نازل، کہ قرآن ہوا آج جیسے نازل.
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جا رہے تھے جہاد کے لیے، تو راستے میں کفار نے لڑکیوں کو سجا کر کھڑا کر دیا تاکہ صحابہ گمراہ ہو جائیں، ان کو دیکھ لیں، اللہ کی مدد نصرت ہٹ جائے. تو اس چال کو معلوم کر لیا جو سپاہ سالار تھے، انہوں نے یہ آیت پاک پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مومنین سے کہہ دیجئے اپنی بعض نگاہوں کو نیچی رکھیں. تو صحابہ فرماتے ہیں ایسے معلوم ہوا ہم کو کہ آج ہی آیت نازل ہوئی، آج ہی کوئی یہ آیت ایسا معلوم ہو نازل، سب نے نظریں جھکا کے چل دی. یہ اس زمانے کا فتنہ ہے، بلکہ اس سے بھی تو شروع سے یہ چلا آ رہا ہے حسن کا فتنہ. تو صحابہ نظر جھکا کر چل دیے. وہ بازار تھا، وہ بازار، اس بازار سے گزر گئے اور دیکھا بھی نہیں دائیں بائیں. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. تو وہاں سے گزر کر ان لڑکیوں نے کہا کہ یہ تو فرشتے ہیں، ان سے تم نہیں لڑ سکتے، یہ انسان نہیں ہے تو فرشتے ہیں، ان سے تم نہیں لڑ سکتے. تو مکن تہذیبم اس کشتن کے من، حضرت خالد ابن ولید رحمۃ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ये कुफार तुम हमसे क्या लड़ोगे कि हम इतनी मोहब्बत, हम जो है अपनी जान के खुद प्यासे हैं, अपने खून के खुद प्यासे हैं, जितनी तुम्हें शराब से मोहब्बत है इससे ज्यादा हमें शहादत से मोहब्बत है, जितनी तुम्हें शराब से है मोहब्बत उतनी हमें उससे ज्यादा शराब से मोहब्बत है, शहादत से मोहब्बत है, जितनी तुम्हें शराब से मोहब्बत है। इसको मरूम फरमाते हैं, तू मकुन तहदीदम अस कुश्तन के मन तश्नाए जारम बखूने खैशतन, तुम मुझको मौत से ना डराओ, फरमाते मैं अपने खून का खुद प्यासा बन चुका हूँ, तो इसलिए अपनी बुरी ख्वाहिशात का खून करना ये महबूब हो जाए, ये महबूब जब हो जाता है आदमी को तो ये दलील है कि अब अल्लाह ताला से इसको इश्क हो गया, इश्क की ताल्लुक पैदा हो गया, अल्लाह ताला से इश्क का ताल्लुक पैदा हो गया, फिर जान देना बहुत आसान हो जाता है। अरमानों का खून करना जब शुरू कर दिया तो फिर जान देना भी आसान हो जाता है। हजरत मुफ्ती शेख शफी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, हजरत मौलाना शाह लोनी भूलपुरी रहमतुल्लाह को, हालांकि खुद मुफस्सिर थे लेकिन कहा, हजरत जब आप तफसीर करते हैं तो कुछ और ही मजा होता है, कुरान पाक की आयत की तफसीर आप करते हैं तो उसका मजा कुछ और ही होता है, हो जाता है। मैं दाफ़े आलाम है तिरयाक है लेकिन कुछ और ही हो जाती है साकी की नजर से। हजरत अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह कितने बड़े आलिम थे, लेकिन जब हजरत थानवी रहमतुल्लाह के पास गए पहले तो कुछ एतराज था दिल में, फिर जब पहुंच गए हकीमुल उम्मत के पास देखने के लिए, ऐसे ही वहां जब पहुंचे तो वहां अजीब हाल है, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने तकरीर की तो हजरत सैयद सुलेमान अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आज ही पाया मजा कुरान में, जैसे कुरान आज ही नाजिल हुआ, जैसे कुरान आज ही नाजिल हुआ, जाने किस अंदाज से तकरीर की, फिर ना पैदा शुभाए बातिल हुआ, शुभात सब रफा हो जाते हैं। हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हमारे जो मामू थे वो कुछ बिदअती थे, हजरत थानवी रहमतुल्लाह किसी तो वो किसी पीर से ताल्लुक था, तो फरमाया कि उनकी बातें भी होती थी हिकमत की बाजी लेकिन इत्मीनान नहीं होता था, और हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह माजी मक्की रहमतुल्लाह की बातों से इत्मीनान होता जाता था। तो फरमाया आरिफ की कलाम की ये शान होती है कि उसकी बात से दिल में इत्मीनान होता जाता है, सादे सीधे अल्फाज होंगे लेकिन दिल में इत्मीनान होता जाएगा, जैसे किसी प्यासे को पानी मिल जाए ठंडा और पिए तो कैसी राहत और इत्मीनान। तो ऐसे जो तालिबे हक होता है, तालिबे इस्लाह होता है, उसको किसी आरिफ के साहिब तकवा की बातों से ऐसे ही इत्मीनान होता है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा इत्मीनान नसीब हो जाता है। तो जाने किस अंदाज से तकरीर की, फिर ना पैदा शुभाए बातिल हुआ, आज ही पाया मजा कुरान में, जैसे कुरान आज ही नाजिल हुआ, छोड़कर तदरीसो दरसो मदरसा, शेख भी रिंदों में अब शामिल हुआ, लेकिन ये छोड़ना नहीं है। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मतलब इस्लाह की भी फिक्र में लग गए इसके साथ साथ, इल्म हो अमल ना हो फिर क्या उसका फायदा है, फायदा लेकिन कामिल नफा तो नहीं हो सकता। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अमरत वाला ने फरमाया कि हजरत मौलाना याहिया साहब शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह के वालिद तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह के खास खादिम थे, खादिम खास थे और बहुत उनके महबूब मुरीद थे, खलीफा थे और खास खादिम खास थे। तो मौलाना माजिद अली साहब दोनों हम सबक के उस्ताद भी थे, मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह उस्ताद भी थे मौलाना याहिया साहब के। तो मौलाना माजिद अली साहब जो है वो बैत नहीं होते थे मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह से, तो मौलाना याहिया साहब रहमतुल्लाह को ये ख्याल होता था कि भाई ये बैत नहीं होते हैं, कुतुबुल आलम अल्लाह ने उस्ताद दे रखा है, सिर्फ उस्ताद ही इन्होंने बना रखा है, शेर भी बना ले, और बैठ हो जाए, दिल तो बहुत चाहता था उनका, लेकिन ये मौलाना माजिद अली साहब होते नहीं थे, अभी बड़े आलिम थे। एक दिन दरसे बुखारी के दौरान हजरत वाला रहमत है फरमा दे, अल्लाह वालों को अल्लाह समझ और फहम भी कैसा देता है। तो मौलाना याया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दौरान सबक जो थोड़ा सा वक्फा किया मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने दरसे बुखारी के दरमियान में, तो अचानक कह दिया कि हजरत ये मौलाना माजिद अली साहब को बैत कर लें। मौलाना माजिद अली साहब को बैत कर लें। मौलाना याया साहब ने कहा मौलाना माजिद अली साहब को बैत कर लें हजरत। तो मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह ने हाथ बढ़ा लिया, क्योंकि जानते थे, दोस्त भी थे, कि ऐसे इतने तो बेअदब नहीं है ये, इतने मतलब है कि बेअदबी का मर्ज तो नहीं कि इतना बड़ा कुतुबुल आलम हाथ बढ़ा दे और वो हाथ ना बढ़ाए। और मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह ने समझे कि इन्होंने इनको वकील बनाया है। तो कहा कि इनको वकील, इनको कहा है कि भाई आप इस तरह कह दे मौलाना गंगोई से, मुझे शर्म आती है, बाद औकात होता है, लेकिन इस तरह खिलाफ उसूल है, खिलाफ उसूल। हजरत खान भी रहमतुल्लाह के पास कोई कहता कि हजरत इनको बैत कर ले, बैत होना चाहते हैं, तो हजरत खूब डांट के भगा देते ताकि आइंदा किसी को हिम्मत ही ना हो कहने की कि ये बैत, कहा कि भाई प्यास लगी है तो खुद ही कहेगा कि पानी दे दो, दूसरे से कहलवाने का क्या माना है कि प्यास कम है। जब प्यास लगे तो आना जाओ। तो वो तो खैर हकीम उम्मत की एक शान थी कि न लालच दे सकी हरगिज, रमजी अटावी शायर हजरत खान रमजान के बारे में कहता, न लालच दे सकी हरगिज तुझे सिक्कों की झनकारें, तेरे दस्ते तवक्कुल में थी इस्तगना की तलवारें, जलाले कैसरी बख्शा जमाले खान का ही को, सिखाए फकर के आदाब तूने बादशाही को, बादशाहों को फकर के आदाब सिखाए कि फकीरी कैसे की जाती है और किस तरह से ये अल्लाह जो फकीर होता है अल्लाह का, उसके सामने बादशाह भी गधा होते हैं, सलातीन भी गधा बन के रहते थे। तेरे आशिक में भी एक नाज़ माशूका ना होता है, ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तेरे आशिक में भी एक नाज़ माशूका ना होता है, खुशामद में है सब मज्जूब के वो रुख नहीं करता, तेरे आशिक में भी एक नाज़ माशूका ना होता है। लेकिन ये आशिक में भी एक नाज़ माशूका ना, ये सब पैदा ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में मिटे, नफ्स को मिटाया, फिर कहीं जाकर क्या से क्या हो गए। एक दफा हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के लोग बड़ी आवभगत करने लगे, तो कहा देखे वो नाज उठाए थे तो फिर क्या अल्लाह ने दिया, तो आवभगत करने लगे तो क्या कहा, तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कुछ खफा थे, तो लोगों से कहा बिठाते हैं जो सब सराखों पर उसकी खुशी क्या हो, किसी के कल्ब नाजुक पर गिरा मालूम होता है, भाई इसकी क्या खुशी हो, किसी के कल्ब नाजुक पर गिरा मालूम होता है। खैर तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो अब जनाब इन्होंने कहा मौलाना याहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि मौलाना माजिद अली साहब को बैत कर लें हजरत, तो उन्होंने हाथ बढ़ा लिया वहां गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने। इन्होंने भी हाथ बढ़ा लिया, अब बैत हो गए। तरकीब इनकी बड़ी अजीब थी। उसके बाद हमारे द्वारा ने फरमाया पूरी जिंदगी मौलाना माजिद अली साहब खत लिखते रहे मौलाना याहिया साहब को कि अल्लाह आपको जजाए अजीम अता फरमाए कि आपने मेरा ताल्लुक करा दिया मौलाना गंगोई से। कि वो सारी जिंदगी खत लिखते रहे और शुक्रिया अदा करते रहे कि आपने मेरा ताल्लुक करा दिया। तो ये हजरत मौलाना हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह को एक दफा मौलाना शाहबुगनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हकीम अख्तर मैं इस मिंबर में पैदा, यहां मिंबर में पैदा हुआ हूँ, मिंबर के पास मेहराब में, ये जामा मस्जिद की मेहराब में पैदा हुआ। तो हजरत वाला ने कहा था ये बात समझ नहीं आई, तो फरमाया कि यहीं पर मैं मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत हुआ था, तो मेरी रूहानी जिंदगी का आगाज हुआ था, ये गोया में पैदा हो गया था, ये पैदा होना है, तो एक अल्लाह की याद का एक आलम, नए आलम में इंसान आ जाता है। قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ بنائے ہیں. الفالا کا شعر ہے, قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ بنائے ہیں, بنائے ان کا ایک الگ عالم ہوتا ہے قلب میں اللہ تعالیٰ جس کے آتے ہیں, قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ بنائے ہیں. وہ کیسا عالم ہے؟ ایک دفعہ حضرت والا رحمۃ اللہ دہلی گئے, غالباً دہلی, تو کسی نے کہا حضرت بازار چلیے آپ کو بازار دکھاتے ہیں دہلی کا. حضرت نے فرمایا نہ لے جاؤ مجھے ان کی گلی میں, اضافہ ہوگا میری بے کلی میں. آج کل ہم لوگوں کا کیا حال ہے, ہم کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہاں بازار لے کے چلو, کیسا بازار ہے, کیسے یہاں کے جو ہے وہ پکنک پوائنٹس کیسے ہیں ذرا دیکھیں, اور یہاں پہ پارک کیسے ہیں وہ دیکھیں, اور یہاں کی سڑکیں کیسی ہیں وہ دیکھیں, اور یہاں کا یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے, یہاں کی لڑکیاں کیسی ہیں, اصل تو یہ دکھاؤ, ساری چیزیں چھوڑو تو یہ دیکھیں. جس کے دل میں اللہ کا تعلق آ جاتا ہے تو وہ ان سب چیزوں سے تو اسے تشویش ہوتی ہے, کہتا ہے بھائی ہمیں تو اللہ کی یاد میں جگہ دے دو کہ کوئی کہ ہم تنہا بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں. تو قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ بنائے ہیں, وہاں رہتے جہاں دودے فغاں کا آسماں ہوتا, وہاں بستے جہاں خاکستر دل کی زمیں ہوتی, تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی. وہاں اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی, ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو, تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستی ہوتی. وہاں ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو, یعنی اللہ کی یاد میں محبت. حضرت والا رحمۃ اللہ فرمایا اللہ کی محبت سے کبھی دل نہیں بھرتا, کبھی دل نہیں بھر سکتا, اللہ کی محبت سے کبھی دل نہیں بھر سکتا, کبھی بھی دل نہیں بھرتا. یہ ایسی چیز ہے. تو ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو, تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستی ہوتی, وہاں بستے جہاں دودے فغاں کا آسماں ہوتا, وہاں رہتے جہاں خاکستر دل کی زمین ہوتی. یعنی کہیں جہاں چند ٹوٹے ہوئے دل رہتے, مجاہدہ کرنے والے لوگ رہتے, اللہ کو یاد کرنے والے لوگ رہتے, گناہ سے بچنے والے لوگ رہتے, دل جو ملتا ہے تو بس سوختہ سامانوں سے, ان گھر کچھ ہمیں ہوتا ہے تو ویرانوں سے, ان گھر کچھ ہمیں ہوتا ہے تو ویرانوں سے, دل جو ملتا ہے تو بس سوختہ سامانوں سے. حضرت مولانا شاہ عبدالغنی بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر کا مزہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق کے بعد ہی مجھ کو آیا. ذکر کا جو مزہ آیا وہ تعلق کے بعد ہی, حکیم الامت کے تعلق کے بعد, پہلے بھی ذکر کرتے تھے لیکن وہ مزہ نہیں آتا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرمایا اہل اللہ کے قلوب میں اس آتش ہی آئینے کے ہوتے ہیں. فرمایا جس میں سے جب سورج کی آتشی آئے نا, جس میں سے سورج کی روشنی پڑھ کر کاغذ پر کسی چیز پر جب پڑتی تو جلا دیتی ہے, ایسے ہی ان کے قلوب سے جب اللہ کی محبت ان کی صحبت میں بیٹھنے سے جو تجلی ہوتی ہے وہ بیٹھنے والوں کے قلوب کو, کیونکہ اس قلب سے آ رہی ہے تو وہ آتشی آئینے کی مثل ہے, تو وہ اللہ کی محبت میں جو تعلق والے ہیں ان کے قلوب کو بھی جلا دیتی ہے. قوی تجلی نصیب ہو جاتی ہے, قوی تجلی جس سے نفس مٹ جاتا ہے, جس سے نفس مغلوب ہو جاتا ہے. یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ کہاں ہے اور کدھر, آرزو کا عالم ہے کہاں ہے اور کدھر, آرزو کا عالم ہے. میں عرض کر رہا تھا الفاظ کے اشعار بس ختم کرتے ہیں. عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے کہ قرآن ہوا آج جیسے نازل. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کو کچھ خاص علوم نبی پاک علیہ وسلم سے حاصل ہوئے, تو فرمایا نہیں مگر ایک سمجھ جو قرآن پاک میں یعنی دین میں آتا ہوئی. حکیم الامت وہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ وہی سمجھ ہے जिससे समझ के जब वो समझाता है तो समझ में आ जाता है। कैसी प्यारी बात फरमाई। इसी इसको आज मौलाना शाबलोनी भोजपुरी रमतारे फरमाते थे, एक मन इल्म के लिए 10 मन अकल और फहम चाहिए। यही फहम और अकल, ये नफ्स जब तक नहीं मिटता उस वक्त तक ये फहम और अकल नहीं नसीब होती।
खुदा शेख को मेरे रखे सलामत, खुदा शेख को मेरे रखे सलामत, के नाक़िस हुए उनकी सोहबत से कामिल, के नाक़िस हुए उनकी सोहबत से कामिल।
आखिरी शेर है, मक्ता है।
ये उम्मीद है तेरे लुत्फ़ो करम से, ये उम्मीद है।
जब दूसरे के लिए आदमी दुआ करता है तो फरिश्ते कहते हैं वाला कम मिस्ल उदानी, तेरे लिए भी ऐसा ही। और फिर किसी अपनी सेहत के लिए दुआ करना तो हजरत वाला रहमतुल्लाह ने फरमाई, ये देखो हदीस शरीफ में है कि اذا ترك العبد الدعاء للوالدين فانه ينقطع عنه الرزق، कि जब कोई दुआ तर्क कर दे वालदैन के लिए तो उसका रिस्क قطع हो जाता है। तो फरमाया जिस्मानी जो वालदैन हैं वो उनकी दुआ उनको उनके लिए दुआ को छोड़ देने से रिस्क जिस्मानी قطع हो जाता है। तो जो फरमाया कि रूहानी बाप होता है शेख उसके लिए दुआ करते रहोगे तो रूहानी रिस्क जारी रहेगा, रूहानी रिस्क फिर जारी रहता है। और दूसरे के लिए दुआ हदीस शरीफ में सबसे तेज रफ्तार कबूलियत के एतबार से जो दुआ है कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए करे वो है। और फरिश्ता कहता है अल्लाह का मिस्ल ज़ालिक, तेरे लिए भी ऐसा ही। तो ये दूसरों के लिए दुआ करना ये बहुत मुबारक है, अपने लिए भी करें लेकिन पहले अपने लिए करें। तो कोई दुआ कराए कि दुआ करते मेरी इस्लाह हो जाए, तो दुआ महज ये ना करे कि आपकी इस्लाह हो जाए, कहे कि अल्लाह मेरी भी इस्लाह कर दे आपकी भी इस्लाह कर दे। तो अपने को दुआ में मुकद्दम रखना ये सुन्नत है, सुन्नत है। अपने से गाफिल ना हो कि मेरी भी इस्लाह हो जाए आपकी भी इस्लाह हो जाए सब उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह हो जाए, अल्लाह ताला मुझे भी अल्लाह वाला बना दे, हज़रत वाले रहमतुल्लाह की दुआ करते थे, और आपको भी अल्लाह वाला बना दे और सब उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह वाला बना दे। अल्लाहुम्मा कुल्ल खैरिन लिकुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, ये हज़रत हम रहमतुल्लाह की दुआ है। ये अल्लाह ताला तमाम मुसलमान मर्दों औरतों को तमाम भलाइयां नसीब फरमाए। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की एक दुआ है, फरमाया कि मुझे जो कुछ मिला इस दुआ की बरकत से मिला। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका अला ताअतिक, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका अला ताअतिक, या अल्लाह ताला हमारी मदद फरमा अपनी ताअत पर, ताअत पर दीन पर हमारी मदद फरमा। तो अल्लाह की मदद आ गई दीन पर चलने में तो बस फिर क्या रह गया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद चाहते हैं। तो हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, देखो इससे पता लगा हमारी इबादत और इबादत पर इस्तेकामत उनकी इस्तेआनत की मोहताज, उनकी इस्तेआनत की मोहताज है। उनकी मदद होगी तो इबादत भी, तौफीक इबादत भी होगी, तौफीक इस्तेकामत भी होगी। अगर वहां से इआनत नहीं होगी, इस्तेआनत नहीं होगी, मदद नहीं होगी, तो फिर ना इबादत होगी ना इस्तेकामत होगी। इबादत हो भी गई तो इस्तेकामत कैसे होगी भाई। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका अला ताअतिक। और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह की एक दुआ, या अल्लाह ताला जैसे आपने मेरे चेहरे को मेरे सर को गैर के सामने झुकने से रोक दिया, ऐसे मेरी जबान को भी गैर के सामने खुलने से रोक दिया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह की दुआ, जैसे आपने मेरे सर को गैर के सामने झुकने से रोक दिया, ऐसे मेरी जबान को भी गैर के सामने खुलने से रोक दिया। बहुत ये अहलुल्लाह की दुआएं अजीब होती हैं। जितना यकीन में कमी होगी اتنا مخلوق سے احتیاج ہوتا ہے. بات یہ اتنا یقین میں کمی ہوتی ہے اللہ کے وعدوں پر, توحید کمزور ہوتی ہے, اللہ کے وعدوں پر یقین میں کمی ہوتی ہے, ایمان میں کمی ہوتی ہے, اتنا ہی مخلوق سے احتیاج ہوتا ہے. اور جتنا یقین مضبوط ہوتا ہے, پختہ ہوتا ہے, اتنا مخلوق سے استغنا ہوتا ہے, اللہ سے احتیاج ہوتی ہے, اتنا ہی اللہ کی طرف رجوع ہوگا. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا سکھائی, فرمایا اس دعا کی برکت سے تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. یا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ, فرمایا اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لو اس دعا کو, تو ساری دعائیں اس کی برکت سے انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی. یا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مغفرت فرما اور امت مسلمہ پر رحم فرما اور امت مسلمہ کی مدد فرما. کیسی پیاری دعا ہے. اور حضرت مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو اس دعا کو کر لے گا اور جو آمین بھی کہہ دے گا اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیں گے. مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے, یا اللہ تعالیٰ سنتوں پر زندہ رکھیے, سنتوں پر چلنے کی توفیق دیجیے اور سنتوں پر زندہ رکھیے اور سنتوں پر ہی ہم کو موت دیجیے. اتباع سنت کی توفیق دیجیے اور اتباع سنت کے ساتھ زندہ رکھیے اور اتباع سنت ہی متبع سنت ہوں اور اسی حال میں ہمیں موت دے, آمین. فرماتے ہیں جو اس کو مانگے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کر دے گا اور جو اس پر آمین کہہ دے گا اس کی بھی مغفرت کر دے گا. حدیث شریف میں انا عند ظنی عبدی بھی, تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے ساتھ, بندے کے گمان کے ساتھ. ہم نے دوستوں سے کہا بھائی ہمیں تو جہنم کا مراقبہ تو ذرا خطرناک لگتا ہے, دل و دماغ میں اتنی قوت نہیں کہ جہنم کا مراقبہ کریں عذاب. ہاں جنت کا مراقبہ کرتے ہیں, اس میں ذرا مزہ آتا ہے. موت تو خود اس کی ذیل میں آ جاتی ہے کہ نہیں بھائی, جنت کے کیسے ملے گی, موت ہی کے بعد ملے گی. تو جہنم کو یاد کرنے سے وہ تو جنت کو یاد کر لیتے بھائی, کمزور ہیں ضعیف ہیں. ہمیں دوستوں سے کہا بھائی یہ جو ہے جنت کو یاد کرنا ہے دراصل انا عند ظنی عبدی, یہ گمان بھی دراصل ایک دعا ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی, گمان جو ہے کہ اللہ ہمیں جنت, اللہ سے گمان رکھنا, حسن ظن رکھنا, یہ بھی زبردست دعا ہے. کیونکہ حدیث شریف میں میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, تو نیک گمان حسن ظن یہ بھی دعا ہے دراصل. اب اللہ سے درخواست ہے جیسا گمان رکھے گا ویسی معاملہ ہوگا. اب جنت کا مراقبہ, جنت کو سوچ رہا ہے جنت میں ایسے رہنا ویسا, خود بخود دنیا سے دل سرد ہوگا, اچاٹ ہوگا رفتہ 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 رفتہ, یہاں سے خود بخود اچاٹ ہوگا. اور نہ کوئی ٹینشن, نہ کوئی خوف, نہ کوئی وحشت, اور دل بھی اچاٹ ہو گیا. دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. شاعر کہتا ہے دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر, انشاءاللہ نہ دامن پہ چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, جنتی کا مراقبہ بھی ہو, گناہ بھی چھوڑ گئے جنتی بھی بن گئے, جیسا گمان ویسا معاملہ. دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. ہم خاک نشیں, تم ہم خاک نشیں, شاعر کہتا ہے ہم خاک نشیں, تم سخن آرائے لب بام, تم سخن آرائے لب بام, ہم خاک نشیں. یعنی گرو کے پاس جب آدمی جائے گا تو کہے گا بھائی, وہ جب اوپر ہوں گی تو کہے گا ہم خاک نشیں, تم ہم خاک نشیں, تم سخن آرائے لب بام, اوپر اوپر سے بس جناب چھت پر ہو وہیں سے باتیں کر, پاس آ کے ملو, دور سے کیا بات کرو ہو. پاس آ کے ملو, دور سے کیا بات کرو. تو دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی, یا نہ پڑتے فلیٹ کے نیچے کھڑا ہے شیخ کا فیض وہاں پہنچا رہا ہے. कि हम खाक नशीन सुखन आ रहा है लवे बाप लाइट गई हुई तभी बाहर आए मैं और वो छत पे है ये बाहर खड़े हैं। तो हम खाक नशी तुम सुखन आ रहा है लबे बाम पास आके मिलो दूर से क्या बात। ये जन्नत के अंदर जो हूरों के खेमे हैं वो चलेंगे खुद हूरों के खेमे चलेंगे खेमे खुद चल के आएंगे लेकिन इसका मतलब नहीं ये सिर्फ खेमे होंगे हैं खोला तो कुछ भी नहीं बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का तो चीरा तो ये कतरा खून भी ना निकला ऐसा नहीं है भाई जन्नत है वो सुभान। दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दा हमें अर्थवाला अमीर साहब और कहा तुमसे ये शेर सुना अर्थवाला ने फरमा मैं सुनाओ वो शेर सुनाओ तो फिर अजुर्द ने ये शेर सुनाया। इसी तरह का मौजू चल रहा था तो दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दा तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो हम खाक नशी तुम सुखन आ रहा है लबे बाम पास आके मिलो दूर से क्या बात करो। तो भाई ये मकता भी हम पहुंच गए मजमून तो कुछ और था दिल में कुछ ध्यान करेंगे लेकिन ये उम्मीद है तेरे लुत्फ करम से अल्लाह के लुत्फ और करम से ये उम्मीद है तेरे तो करम से तुम्हें तो पता नहीं था आगे ये शेर है सुभान ये तस्करा तो खुद आ गया ये उम्मीद है तेरे लुत्फो करम से के अख्तर भी हो अहले जन्नत में शामिल और मतलब बड़ा ये यही गुमान है ये उम्मीद है तेरे लुत्फ करम से ये उम्मीद है तेरे लुत्फ करम से के अख्तल भी हो अहले जन्नत में शामिल के अख्तल भी हो अहले जन्नत में शामिल पहाड़ों का दामन समंदर का साहिल मेरी आह दिल के लिए मनाज़िल मेरी आह दिल के लिए मनाज़िल मखलूक से उसको एहतियात नहीं रहेगा उतना मखलूक से इस्तेगना होगा लेकिन बद अखलाकी के साथ नहीं हुस्ने अखलाक के साथ क्योंकि तौहीद से जो इस्तेगना होता है उसमें हुस्ने अखलाक होते हैं मखलूक के साथ अखलाक बुरे नहीं होते और इस्तेगना तकब्बुर जो होता है तकब्बुर की वजह से उसमें बद अखलाकी भी होती है। मैं अर्ज कर रहा था कि नजर की हिफाजत और दिल की हिफाजत ये सब अहकाम है और दूसरे अहकाम जो जाहिरी मसाइल हों जाहिरी अमाल से मुतालिक तो फुकहा से पूछें बात नहीं अमाल से मुतालिक सो शेख से मुसले से पूछना चाहिए उस पूछ के अमल करता रहे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह शिफा नसीब फरमा देंगे। इस रास्ते में मायूसी नहीं अल्लाह ताला पूरे दीन पर हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي والمرا رسول التسليم رب اغفر وارحم انت خير الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم. سبحان ربك.